हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ईशान ने उसके कंधे पर दांतों से काट लिया। ये दृश्य देखकर मैं हैरानी से सन रह गया और नैना फिर भी जोर जोर से हंस रही थी। और फिर अचानक देखते देखते वहां पुलिस आ गई। पुलिस को देखते ही नैना ने रोने का नाटक शुरू कर दिया और साथ साथ पुलिस को बताया कि मैंने उसके साथ जबरदस्ती की है। जो दांतों के निशान उसने ईशान से बनवाए थे वही उसने पुलिस को दिखा दिए। पुलिस को ईशान ने अच्छी खासी मोटी रकम भर दी थी। उस वक्त मैं पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था। नैना का धोखा मुझे अंदर तक तोड़ चुका था। मैं चाहकर भी किसी को सच नहीं बता पाया। मैंने कितनी ही कोशिश की, कितनी ही कोशिश की जेल से निकलने के लिए, लेकिन हर बार ईशान ने हर तरीके से मुझे जेल में ही रखने की साजिश रची। धीरे धीरे नैना की बेवफाई और उसका धोखा सोच सोचकर मैं पागल सा होने लगा था और इसी वजह से मुझे स्ट्रोक आने लगे थे। अब जब सारा सच झलक के सामने आया तो झलक को ऐसा लगा मानो उसके पैरों में जान ही नहीं बची हो। वो पीछे की ओर लड़खड़ाती चली गई और सीधा टेबल से जा टकराई। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। उसका दिल और दिमाग नफ़रत से भर चुका था। उसकी आंखों में नफ़रत की चिंगारियां साफ छलकने लगी थीं। वहीं आरव आगे बोले थे, जिस वक्त बेटा मैंने तुम्हें टीवी पर देखा और नैना तुम्हें अपनी नाजायज़ बेटी बता रही थी, तभी मैं समझ गया था कि तुम उसी रात की निशानी हो। और मैं ये सोचकर हैरान था कि जब उसने मुझे धोखा दिया तो फिर उसने मेरा बच्चा क्यों रखा। लेकिन जब मैंने टीवी पर तुम्हारी जुड़वा आकांक्षा को देखा तब मुझे समझ आया कि तुम्हें जिंदा क्यों रखा गया होगा। अपने पिता की ये बात सुनकर झलक एक पल के लिए घुटनों पर बैठ गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मिस्टर आरव जो सच बता रहे हैं क्या ऐसा सच भी हो सकता है। वहीं दादाजी के तो खून में आग लग गई थी। वो पूरी तरह भड़क उठे और गुस्से में बोले, उस ओबेरॉय परिवार की इतनी हिम्मत, उन्होंने बड़ी ही चालाकी से पुलिस को पैसे देकर हमें तुम्हारा कोई सुराग तक नहीं लगने दिया। हमने तुम्हें देश विदेश में कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारा बच्चा इतने सालों से जेल में बंद था। उन्होंने हमारे बेटे की जिंदगी के कीमती 22 साल छीन लिए। हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। ये कहते हुए दादाजी गुस्से से फुंकारने लगे। तभी अनामिका ने तुरंत उन्हें संभालते हुए कहा, शांत हो जाइए दादाजी, शांत हो जाइए, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है, झलक को संभालने का है, उसकी हालत तो देखिए। अनामिका की बात सुनकर दिग्विजय सिंह जी ने झलक को देखा और अचानक आके बढ़कर उसे गले से लगा लिया। वहीं झलक को अब तक इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी अचानक यूं पलट जाएगी और उसकी जिंदगी में कुछ अजनबी लोग आकर खड़े हो जाएंगे जो अब उसके अपने बन चुके हैं। वो इन सारी बातों से पूरी तरह चकरा गई थी। वो कुछ भी सोच समझ नहीं पा रही थी। तभी अनामिका उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आओ मेरे साथ। ये कहकर अनामिका झलक को अपने साथ एक अलग कमरे में ले गई। कमरे में पहुंचते ही अनामिका ने झलक की ओर देखते हुए कहा, तुम जानती हो झलक, मैं शुरू से चाहती थी कि काश मेरा भी कोई भाई या बहन होता जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें कह पाती। हम दोनों साथ में हैंग आउट करते, घूमते फिरते, कितना मज़ा आता ना। और आज मुझे एक बहन मिली है, तुम नहीं जानती मैं कितनी खुश हूँ। बचपन से लेकर आज तक मेरी जिंदगी में सिवाय अकेलेपन के कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैंने अपने पिता को ढूंढने को ही अपना मिशन बना लिया, क्योंकि मैंने देखा था कि दादाजी किस तरह पापा को ढूंढने के लिए परेशान रहते थे, लेकिन कहीं भी उनका कोई पता नहीं चलता था। फिर जब मैंने अपने पिता को ढूंढने का फैसला किया तो मेरा मुंबई जाने का मकसद भी वही था। भले ही मैं तुम्हें अपना मकसद नहीं बता पाई, लेकिन अब छुपाने की कोई वजह नहीं रही है। ये कहते हुए अनामिका ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें धुंधली हो गई थीं और उसे पुराने दृश्य याद आने लगे। जब अनामिका 60 साल की थी तभी उसे इस राज के बारे में पता चला था कि उसके पिता मरे नहीं हैं, बल्कि कहीं गायब हो गए हैं। उसके दादाजी मिस्टर मल्होत्रा ने हर संभव कोशिश की, लेकिन वो अपने बेटे को ढूंढ नहीं पाए। धीरे धीरे अनामिका के दिल में अपने पिता को लेकर एक जुनून सा सवार हो गया था। जब भी वो अपने क्लासमेट्स को अपने पिता के साथ खेलते, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते या स्कूल तक गाड़ी से छोड़ते हुए देखती थी तो उसके दिल में एक अलग सी कसक उठती थी। उसका दिल करता था कि काश उसके भी पिता होते। उसे बचपन में बस यही बताया गया था कि उसके माता पिता की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई है, लेकिन एक दिन उसने अपने दादाजी को अपने पिता की फोटो से बात करते हुए सुन लिया था। वो कहते थे कि बेटे के जिंदा होते हुए भी उन्हें उसकी बेटी को संभालने के लिए उसके गले में फूलों की माला डालनी पड़ी, जैसे वो मर चुका हो। ये सुनकर अनामिका की दुनिया ही हिल गई थी। उसने दादाजी से अपने पिता के बारे में सच जानने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त 8 साल की बच्ची को क्या ही बताया जा सकता था। जैसे जैसे अनामिका बड़ी होती गई, अपने पिता को ढूंढने की चाहत और गहरी होती गई। जब वो 18 साल की हुई, तब उसने दादाजी से कसम दिलाकर पूरा सच पूछा। तब दादाजी ने उसे बताया कि उसके पिता की शादी उसकी माँ से अरेंज मैरिज के जरिए बल्कि जबरदस्ती करवाई गई थी। उसके पिता केवल 6 महीने तक ही उसकी माँ के साथ रहे थे। उन्होंने रिश्ते को निभाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी और से प्यार करते थे जिससे वो शादी करना चाहते थे। उस लड़की को हमने इसलिए नकार दिया क्योंकि वो हमारी हैसियत की नहीं थी। फिर हमने तुम्हारी माँ, जो मेरे जिगरी दोस्त की बेटी थी, उससे उसकी शादी करवा दी। मेरे कहने पर तुम्हारे पिता ने इस शादी को एक मौका दिया, लेकिन वो अपने पुराने प्यार को भुला नहीं पाए। एक दिन वो बिना कुछ बताए घर छोड़कर चले गए। जब तुम्हारी माँ को ये पता चला तो वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। इलाज के दौरान पता चला कि तुम उसके पेट में पल रही हो। हमने तुम्हारे पिता को हर जगह ढूंढा, लेकिन इतनी ताकत और पैसा होने के बावजूद हम अपने बेटे को नहीं ढूंढ पाए। वक्त गुजरता गया और तुम हमारी जिंदगी में आ गई। तुम्हारी माँ ने तुम्हें हमें सौंप दिया और कहा कि जब उनका बेटा ही नहीं रहा तो वो रहकर क्या करेंगी। और क्योंकि हमारा जवान बेटा हमें छोड़कर चला गया था, इसलिए तुम्हारी माँ ने तरस खाकर तुम्हें हमारे लिए पैदा किया ताकि हमें जीने का सहारा मिल सके। और तब वो अपनी जिंदगी जीने के लिए चली गई। हमने भी उसे नहीं रोका क्योंकि बेटा, हम तुम्हारे पिता की वजह से किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उस दिन के बाद धीरे धीरे हम ही तुम्हारे माता और पिता दोनों बन गए और हमने तुम्हें पालना शुरू कर दिया। लेकिन बेटा, इस शहर का, इस देश का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां हमने तुम्हारे पिता को ना ढूंढा हो। इतना ही नहीं, देश विदेश हर जगह हमने उसे तलाश किया, लेकिन हमें कहीं उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। ना हमें कभी उस लड़की के बारे में पता चला जिससे वो प्यार किया करता था। फिर आखिरकार हमने हार मान ली और ठान लिया कि अब हमारा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो, और हमने तुम्हें ही अपना वारिस घोषित करने का फैसला किया, क्योंकि जायदाद का हम बूढ़े लोग क्या करते। ये सब कुछ तो तुम्हारे पिता का ही होना था, लेकिन अपने प्यार के चलते उसने सब कुछ त्याग दिया और हमें छोड़कर चला गया।
लेकिन अनामिका अपने पिता का सच हाल ही में जानना चाहती थी। वो अपने पिता की फोटो को अक्सर देखती और उससे बातें किया करती थी। उसके दिल में हमेशा यही ख्वाहिश रहती थी कि काश उसके पिता भी उसके साथ होते, जिस तरह और लड़कियों के लिए उनके पिता उनके आइडियल और उनके हीरो होते हैं। वो ये ठान चुकी थी कि चाहे कुछ भी करना पड़े, वो अपने पिता के बारे में पूरी जानकारी हासिल करके ही रहेगी। और फिर एक दिन उसे एहसास हुआ कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई इंसान घर छोड़कर चला जाए और अपने घर वालों से संपर्क करने की कोशिश न करे। अनामिका ने जल्दी ही अपने घर की पिछले 20 सालों की पूरी कॉल डिटेल्स निकलवाना शुरू कर दिया। तभी उसमें उसे एक नंबर नजर आया। वो नंबर कहीं और का नहीं बल्कि मुंबई का था।